मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। AFAIS के आज 21 मई 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथी मित्रों विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी नरेंद्र सिंह का जो सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हैं, जिन्होंने एकेडमी की 15 दिन की क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। फ्रेंड्स, आप सब प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि UPSC ने अब प्री एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के बारे में कोई फाइनल निर्णय ले लिया होगा, है ना। कल UPSC की मीटिंग होनी थी, मीटिंग हुई भी, लेकिन फिलहाल आयोग ने परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की है, अपने निर्णय के डेट को ही स्थगित कर दिया है। अब आयोग ने कहा है कि 5 जून को उसकी बैठक होगी और इसके बाद फिर वो प्री एग्जामिनेशन के बारे में फैसला करेगी। और 5 जून का जो उन्होंने फैसला लिया है, इसलिए लिया है शायद क्योंकि 31 मई को लॉकडाउन खत्म होगा। 31 मई तक फिर से सरकार एक परिदृश्य देगी हमारे राष्ट्रीय स्थिति का कि कोरोना को लेकर के क्या क्या स्थितियां बन रही हैं। स्टेट अपने अपने ढंग से काफी कुछ निर्णय ले चुके होंगे। आप देख रहे हैं कि कैसे जो लॉकडाउन 4 है वो लॉकडाउन तो है लेकिन उसमें आपको बहुत सी लिबर्टीज मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, है ना। धीरे धीरे ट्रेनें चलनी शुरू हो रही हैं, फ्लाइट सेवाएं भी शुरू हो रही हैं, दुकानें खुल रही हैं, सरकारी ऑफिसेज और जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं वो भी खुलने शुरू हो गए हैं। उद्योगों में भी काम लगभग शुरू कर दिया गया है, भले ही कुछ नॉर्म्स के साथ ही कर दिए गए हों, है ना। जो कंस्ट्रक्शन वर्क और दूसरे काम हैं उनमें भी शुरुआत कर दी गई है। तो ये जो लॉकडाउन 4 है ये थोड़ा सा उदार स्थितियों को लेकर चल रहा है। तो UPSC ने निश्चित रूप से ये फैसला किया होगा कि 5 जून को फैसला लेना इसके बारे में कि प्री एग्जाम कब कंडक्ट किया जाए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि देखिए UPSC को ये जो एग्जाम कंडक्ट करना है वो दिल्ली में ही तो करना नहीं है, उसको राज्यों में सारी चीजें करनी है और बिना राज्यों के सहयोग के ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अलग अलग राज्यों में कोरोना के उस समय क्या स्थिति होती है उसके आधार पर ही UPSC कोई निर्णय ले सकती है। तो दोस्तों एक सलाह के रूप में तो देखिए मैं अभी यही कहूंगा कि मान करके चलिए कि एग्जाम कभी भी हो सकते हैं, एक सैनिक की तरह जो हमेशा तैयार रहते हैं आपको भी तैयार रहना चाहिए। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के रूप में मैं जो राष्ट्रीय आपदा आप देख रहे हैं जो अम्फन के कारण आया हुआ है उसी को आधार बना करके और बार बार आप NDRF की टीम के बारे में सुनते हैं तो इस पर कुछ चर्चा करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। एक जो खबर धीरे धीरे देखिए कि किस तरह से जड़ पकड़ती चली जा रही है या यूं कह लीजिए कि फैलती चली जा रही है, वो है नेपाल और भारत के संबंधों में धीरे धीरे आ रही खटास और वो भी सीमा को लेकर, है ना। मैंने आपसे दो स्थानों के बारे में पहले बात की थी, उस समय अखबारों में दो स्थानों के बारे में आया था, लिपू लेख और काला पानी, ये दो स्थान आपको मालूम होने चाहिए। उसमें दोस्तों एक और स्थान है लिम्पियाधुरा, ये तीन स्थान हैं और अभी नेपाल ने जो अपना एक राजनीतिक नक्शा जारी किया, पॉलिटिकल मैप जो जारी किया है, उसमें इन तीनों स्थानों को अपने अधिकार क्षेत्र में बताया है नेपाल ने, जबकि इनफैक्ट ये बकायदे हमारे अपने अधिकार क्षेत्र में हैं और ये हमारे उत्तराखंड के अंतर्गत आते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि नेपाल ने जो अपना इसके बारे में जो विरोध जाहिर किया है वो खासकर जब भारत ने लिपू लेख दर्रा और धारचूला को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कराया तो फिर उसने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। तो दोस्तों धीरे धीरे अब इसको लेकर के एक तनाव की स्थिति भी बनती जा रही है और कल मैंने आपको बताया था कि अब ऐसा महसूस किया जा रहा है कि नेपाल ये जो कुछ भी कर रहा है वो शायद चीन के शह पर कर रहा है। नेपाल के बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि पहले नेपाल हिंदू राष्ट्र रहा था, फिर वो चलिए सेकुलर हो गया और नेपाल में अभी भी राजनीतिक दृष्टि से दो बिल्कुल परस्पर विरोधी पार्टियां हैं भारत को लेकर के। तो खासकर एक राजनीतिक दल ऐसा है जो भारत का जबरदस्त समर्थक है, है ना, भारत के साथ बहुत दोस्ताना संबंध मानता है, लेकर चलता है। दूसरी जो राजनीतिक पार्टी है जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वह बेसिकली आप यूं कह लीजिए कि भारत की धूर विरोधी तो नहीं कह सकते लेकिन वो चीन का बहुत समर्थक है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी है, वो चीन के साथ बहुत अच्छे संबंध बना करके रखना चाहती है। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं भारत से थोड़ा सा दूरी बना करके रखती है, यूं कह लीजिए कि भारत विरोधी रुख अख्तियार करती है। अभी नेपाल में जो सरकार है वो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, तो स्वाभाविक है कि वह चीन को ज्यादा तरजीह देगी राजनीतिक आदर्शों की दृष्टि से। हालांकि अब ऐसा कोई कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आदर्श नहीं रह गए हैं, खासकर लिबरलाइजेशन के बाद, इसको इसके बारे में भी आप सब जानते ही हैं। तो अब यूं कह लीजिए कि नेपाल हमारी सीमा रेखा से लगा हुआ है, भारत का बहुत ही परंपरागत मित्र रहा है, और उसके साथ इस तरह के संबंधों में खटास आना केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि खुद नेपाल के लिए भी एक चिंता का विषय होना चाहिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि कैसे धीरे धीरे स्थितियां आगे बढ़ती हैं और इसका क्या हल निकल सकता है। लेकिन आप क्यों दिमाग में ये बात स्पष्ट रखनी चाहिए कि नेपाल ने जो अपने इन तीन क्षेत्रों पर दावा पेश किया है, भारत ने उसे आउट राइट रिजेक्ट कर दिया है, राइट? दोस्तों, आज आपने अखबारों में पढ़ा है, न्यूज में भी आपने सुना होगा कि किस तरीके से धीरे धीरे जो एम्फन तूफान है, चक्रवाती तूफान है, सुपर साइक्लोन बन गया है, बढ़ता चला जा रहा है। और कुछ आज आपने अखबारों में भी उसके बारे में पढ़े, सुंदरवन का नाम आपने सुना, जो सुंदरवन खासकर पश्चिम बंगाल में सुंदरवन बेसिकली सुंदरी नाम के पेड़ जहां होते हैं वो सुंदरवन कहलाता है। और मुझे लगता है कि 2013 या 2014 में इस पर सीधे सीधे प्रश्न भी पूछा गया था मेंस में, और ये था कि ये जो सुंदरवन है, जो पेड़ होते हैं, ये किस तरह से चक्रवाती तूफान से हमारी रक्षा करते हैं, है ना? तो जो चक्रवाती तूफान देखिए 150 किलोमीटर 160 किलोमीटर की रफ्तार से आ रहे हैं, तो ये जो पेड़ होते हैं ये समुद्र के किनारे खड़े होते हैं, तो आप यूं कह लीजिए पेड़ों की दीवार है, तो जब हवा इससे टकराती है तो स्वाभाविक है कि हवा की गति थोड़ी मंद हो जाती है। हालांकि हवा की गति, हवाएं जो हैं उन पेड़ों को पार करके अंदर की तरफ चली जाती हैं, लेकिन उनकी गति कम हो चुकी होती है, तो इससे जो नुकसान है वो काफी कम होते हैं। सुंदरी वृक्ष, बड़े खूबसूरत वृक्ष होते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा व्हाट्सएप कह रहा हूं मैं, आप गूगल पर जाकर के देखें कि क्या किस तरह के होते हैं सुंदरी पेड़। तो दोस्तों, इसी के तहत आप लगातार एनडीआरएफ के बारे में सुन रहे हैं, और कल दूरदर्शन न्यूज पर तो एनडीआरएफ के जो महानिदेशक थे उनका काफी विस्तार के साथ उनसे बातचीत भी की गई। एनडीआरएफ के जो महानिदेशक होते हैं वो देखिए इंडियन पुलिस सर्विस के ही सामान्यतः होते हैं, भारतीय पुलिस सेवा के सीनियर ऑफिसर होते हैं, लेकिन ड्रेस आपको पुलिस वाली नहीं मिली होगी, ड्रेस आपको आर्मी वाली देखने को मिली होगी अगर आपने न्यूज चैनल पर देखा होगा तो, है ना, महानिदेशक। आइए तो हम लोग थोड़ा सा मुख्य विषय के तहत अब जो एनडीआरएफ है और जो दूसरी व्यवस्थाएं होती हैं उनको थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो एनडीआरएफ है इसका जो गठन हुआ है, ये जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है उस एक्ट के तहत हुआ है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। इसी के तहत एक ढांचागत व्यवस्था की गई है, संस्थागत ढांचा के बारे में बताया गया है कि आप किस तरह की संस्थाएं बनाएंगे। और मजेदार बात है कि ये जो संस्थाएं बनी है, आप जब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज लगेगी। जैसे देखिए कि संसद है हमारी, है ना, वहां लोकसभा राज्यसभा है, तो राज्यों में क्या है, वहां के विधानसभा और विधान परिषद हैं। हमारे यहां प्रधानमंत्री हैं केंद्र में, तो वहां पता लगा कि चीफ मिनिस्टर हैं। हमारे यहां राष्ट्रपति हैं तो पता लगा कि वहां राज्यपाल हैं। तो इस तरह के समानांतर चीजें चलती रहती है ना, आपके यहां लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी है, तो उनके स्टेट के लोक सेवा आयोग है, तो समानांतर चीजें चलती हैं। तो खासकर इस एक्ट में जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो इसी तरह के समानांतर रूप में है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो व्यवस्था केंद्रीय स्तर पर की गई है लगभग लगभग वही व्यवस्था राज्य के स्तर पर की गई है, और जो व्यवस्था राज्य के स्तर पर की गई है लगभग लगभग वही व्यवस्था जिला के स्तर पर की गई है। जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मान लीजिए बनाया गया केंद्र में, तो उसके हेड हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो राज्य में भी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बना दिया गया तो उसके केंद्र कौन होंगे, वहां के चीफ मिनिस्टर होंगे। तो जिला के स्तर पर भी फिर एक जिला प्रबंधन आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बना दिया गया, आप देखिए कि वही बनाया जा रहा है, तो वहां हेड कौन होगा आप बताइए। अगर जिला के स्तर पर आपदा प्रबंधन बनाया गया है तो वहां का हेड कौन होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो अगर आप सही तरीके से सोच पा रहे हैं तो जिला जो कलेक्टर होगा वो उसका हेड होगा। तो इस तरह से व्यवस्थाएं की गई। ठीक इसी प्रकार से जो एनडीआरएफ आप सुनते हैं बकायदे, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF ये बकायदे केंद्र के स्तर पर बनाए गए। गृह मंत्रालय के अधीन ये काम करता है और इसकी जो टीमें हैं वो बकायदे देश के अलग अलग जगहों पर रखी गई हैं। 12 स्थान चुने गए हैं और देश के अलग अलग जगहों पर रखे गए NDRF की टीम, ताकि जैसे ही जरूरत पड़े इनको फट से वहां पहुंचाया जा सके, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसको जो ये जो काम करता है ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो यहां देखिए राष्ट्रीय आपदा रिस्पॉन्स फोर्स बनाया गया केंद्र के स्तर पर, और ठीक इसी तरह से राज्य के स्तर पर भी बना दिया गया स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स SDRF। तो दोस्तों इसको पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है, जानना बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगर आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए अगर इस एक्ट को पढ़ेंगे, खासकर ढांचागत संस्था को लेकर जो बनाने की बात कही गई, तो आपको बहुत मजा आएगा। इसके साथ ही साथ कुछ और भी संस्थाएं होती हैं जो इसमें मदद करती हैं, जैसे जो हमारे आर्म्ड फोर्स हैं, जरूरत पड़ने पर उन्हें भी बुलाया जाता है। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स हैं, केंद्रीय अर्धसैनिक बल जिसे आप कहते हैं, उन्हें बुलाया जाता है। स्टेट पुलिस फोर्स भी इसमें मदद करती है। जो हमारे सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स होते हैं उनकी भी मदद ली जाती है। चिकित्सा विभाग मदद करती है, फायर सर्विसेज मदद करती हैं, जो NGOs होती हैं वो भी बकायदे सामने आती हैं। स्वयंसेवी संस्थाएं तो मदद करती ही करती हैं, और अगर बहुत जरूरत हुई तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि UNO है, रेड क्रॉस सोसाइटी है, आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ये सब भी बकायदे ऐसी राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में अपनी अपनी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी जानकारी मैंने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको दी हैं, क्योंकि जब राष्ट्रीय आपदा के बारे में जो अभी आई हुई है, आप जब न्यूज़ सुनते होंगे तो हो सकता है कि इनके नाम आपको सुनने को मिलते हों, पढ़ने को मिलते हों, तो यदि थोड़ी सी स्पष्टता दिमाग में पहले से मौजूद रहती है, या यूं कह लीजिए कि भूमिका बनी हुई होती है, तो वो बातें हमारे दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाती हैं और तथ्य हमारी समझ में भी आ जाते हैं। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आज आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। इसमें दो क्लिपिंग्स का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि आप इन्हें जरूर पढ़ें। एक बिजनेस स्टैंडर्ड का है, चीन से विदेशी कंपनियों की क्या होगी वापसी। इसमें सच्चाई पता लगे कि उन्होंने अपने ढंग से एनालिसिस करने की कोशिश की है कि कहा जा रहा है कि COVID-19 के कारण बहुत सी जो विदेशी कंपनियां हैं वो चीन छोड़ना चाह रही हैं और भारत कोशिश में है कि वो भारत में आ जाएं, तो इसकी क्या सच्चाई है। और इसी तरह से दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल है दोस्तों कि अब छोटे शहरों की भी जो अर्थव्यवस्था है वो वर्क फ्रॉम होम से चल सकती है और इससे उनको मजबूती मिलेगी, तो इसकी क्या सच्चाई है। इसके बारे में हर्ष गोयनका का आर्टिकल है, आप इसे भी कोशिश कीजिएगा कि आप पढ़ें। तो दोस्तों न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स के बारे में बस इतना ही। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं प्राची दिमरी रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से, अनूप राज और नितेश विश्वकर्मा, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।